दुष्ट बुद्धि की पुत्री विषया, राजा कुंतलक की पुत्री चंपक मालिनी और उनकी 100 सखियां। उस उपवन में एक दूसरे के साथ हाथ परिहास कर रही थी, इसका वर्णन हमने पिछली बार किया। तो विषया ने कुछ बात कही, अभी राजकन्या चंपक मालिनी कुछ कहना चाहती है, तो मैं इसको शब्दों से यहां से पढ़ता हूं, गौर से सुनिए। एक चीज ध्यान रखिए कि यहां श्रृंगार रस है। हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार के रस होते हैं और उस रसों का आस्वादन करने के लिए हम लोग तड़पते रहते हैं। तो मुख्यतया 5 रस होते हैं, शांत रस, दास्य रस, साक्ष्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। और माधुर्य रस का एक इंटीग्रल पार्ट है श्रृंगार रस। तो क्योंकि जीवात्मा भगवान का अंश है और भगवान के लिए वेदांत में कहा गया है आनंदमयोभ्याषा, अर्थात वो आनंद से परिपूर्ण है और वो आनंद का स्रोत भी है। तो चूंकि जीवात्मा भगवान का अंश है, जैसे गीता भगवान कहते हैं ममे वांश जीवलों के जीव को तो सनातना, तो यदि समुद्र खा रहा है तो समुद्र की एक बूंद भी खाई होगी। उसी प्रकार से चूंकि भगवान सच्चिदानंद रूप है और सभी रसों का आस्वादन नित्य निरंतर करते रहते हैं अपने पार्षदों के साथ, अपने भक्तों के साथ, और चूंकि जीवात्मा भगवान का अंश है तो वो भी सभी रसों का आस्वादन करना चाहता है, ये स्वाभाविक है। इन रसों का आस्वादन करने से जीव कभी निवृत्त नहीं हो सकता। यदि वो कृत्रिम रूप से निवृत्त होने का प्रयास करता है और यदि कर देता है तो उसको आध्यात्मिक आत्मघात कहते हैं, आत्महत्या कहते हैं, दैट इज स्पिरिचुअल सुसाइड, जैसे मायावादी और शून्यवादी लोग करते हैं, खास करके शून्यवादी। मायावादी भी एक ही कैटेगरी के हैं, वो कहते हैं कि हम ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे। जैसे मैंने पिछली बार बताया था, यदि ब्रह्म में विलीन हो गए तो फिर रसों का आदान प्रदान किसके बीच में हो रहा है, सब एक हो गया, क्योंकि रसों का आदान प्रदान करने के लिए कम से कम 2 होने चाहिए, कम से कम। यदि एक ही है तो फिर रसों का आदान प्रदान किसके बीच में होने वाला है, नहीं होने वाला। इसलिए जो कहते हैं कि ब्रह्म निर्माण हो गए, ब्रह्म में विलीन हो गया है, वो वास्तव में एक सुसाइड है। जैसे हम मर गए तो फिर जीवन नहीं भोग सकते, उसी प्रकार से ब्रह्म विलीन हो गए तो फिर रसों का आस्वादन नहीं कर सकते। तो 5 प्रकार की मुक्ति है, सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, शास्ती और सामिप्य। ये 5 प्रकार की मुक्ति होती है और विष्णु के साधक को, विष्णु के भक्त को उसकी इच्छा के अनुसार इन 5 प्रकार की मुक्ति में से कोई भी मुक्ति उसको प्रदान की जाती है। लेकिन वैष्णवगण तो कभी सायुज मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करते हैं, ना ही कभी इच्छा करते हैं, क्योंकि सायुज मुक्ति माने वो ब्रह्म के विलीन हो गया, ब्रह्म के अंदर माने भगवान के शरीर से ब्रह्म जो कि निकलती है, जिसको हम ओम कहते हैं, ओम के नाम से जानते हैं, उसमें विलीन हो जाना, उसमें रसों का कोई आदान प्रदान नहीं होता है, बस जीवात्मा नित्य निरंतर उस ज्योति में रहता। और इस प्रकार की सायुज मुक्ति तो भगवान जिन लोगों की हत्या करते हैं उनको भी दे देते हैं। भगवान जिनकी हत्या करते हैं, जैसे कंस था, रावण था, हिरण्यकशिपु था, हिरण्याक्ष था, इन सब को भगवान ने सायुज मुक्ति दे दी, शिशुपाल था। तो जिन लोगों की भगवान हत्या करते हैं उनको तो भगवान सायुज मुक्ति दे देते हैं, माने जो असुर होते हैं। तो मायावादी लोग और ज्ञानी लोग बड़ा, और कुछ योगी होते हैं, बड़ा कष्ट उठाते हैं ऐसी मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो असुरों के लिए भी सुलभ है, जो भगवान का द्वेष करते हैं ऐसे लोगों के भी वो मुक्ति सुलभ है, सायुज मुक्ति। तो क्या फायदा वो कुछ, और ये मुक्ति ऐसी है क्योंकि उसमें रसों का आस्वादन नहीं होता है, इसलिए उसमें से कुछ समय के बाद 50 वो जीवात्मा पतित हो जाता है। क्यों? खुद की इच्छा से, क्योंकि वो तो आध्यात्मिक रसास्वाद तो हो नहीं रहा है, उसने खुद चूज किया है इस अवस्था में रहने। और फिर वो क्या करता है कि मटेरियल प्लेटफॉर्म पर, भौतिक प्लेटफॉर्म वापस आ जाता है, जिसमें वो अनाथालय खोलता है, हॉस्पिटल खोलता है इत्यादि, अनेक प्रकार के भौतिक पुण्य के कार्य करता है रस का आदान प्रदान करने के लिए। तो जीवात्मा किसी भी अवस्था में इन रसों से विहीन नहीं रह सकता, रसों से निवृत्त नहीं हो सकता। यदि वो आध्यात्मिक रसों का आस्वादन नहीं करेगा तो निश्चित रूप से भौतिक रसों का आस्वादन करने के लिए प्रयास करेगा और करेगा, क्योंकि जीवात्मा के पास दो ही चॉइस है, या तो विरजा के उस पार या विरजा के इस पार, बीच में नहीं टिक सकता, इसलिए वो तटस्थ है, तटस्थ तट पर खड़ा है विरजा। इसलिए हमारे मनुष्य जीवन में यदि हम लोग आध्यात्मिक रसों का आस्वादन करने के लिए प्रयास नहीं करते हैं तो हम भौतिक रसों का आस्वादन करते हैं, करना तो पड़ेगा, उसके बिना हम नहीं रह सकते, क्योंकि तो जीवात्मा भगवान का अंश है, इसलिए वो हमेशा करना चाहते हैं उस रसों का आस्वादन। इसलिए हमारे शास्त्र में व्यास जी ने और उनके शिष्यों ने हमें भौतिक रसों से निवृत्त करने के लिए अपने शास्त्र में, जो उन्होंने शास्त्र लिखे, ग्रंथ लिखे, उसमें सभी रसों को केंद्रगामी, केंद्रगामी उसमें जो केंद्र है, उन सबके कथाओं के रसों का जो वर्णन किया है और रसों को व्यक्त करते हुए कथाओं का जो वर्णन किया है, उसका केंद्र है श्री कृष्ण या तो उनके भक्त। तो इन रसों को आध्यात्मिक कर दिया, तो इन रसों का आस्वादन हम इन कथाओं के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि यदि हम इन रसों का आस्वादन नहीं करेंगे शास्त्र के माध्यम से, इस वैष्णवी कथा के माध्यम से, तो निश्चित रूप से हम इन रसों का आस्वादन करने के लिए माया जगत में जाएंगे, जो करते आ रहे हैं। इसलिए उसमें से हमें ब्रेक देने के लिए, उसमें से निवृत्त करने के लिए ये महान जो महर्षि हैं, जैमिनी, व्यासदेव इत्यादि, शुकदेव गोस्वामी, ये महान वैष्णवगण जो है इन रसों का आध्यात्मिक रूप से वर्णन करते हैं, जो वास्तविक है, ये रस उसके मूल रूप में उसका वर्णन किया है अपने शास्त्रों में, अपनी कथाओं में, जैसे श्रीमद् भागवतम में, उसमें अनेक सारे कथाओं का वर्णन है, उसमें सब प्रकार के रस आ जाते हैं, शांत रस, दास रस, साक्ष्य, वात्सल्य, माधुर्य, सब आ जाते हैं, और भी गौण रस हैं, उनको व्यक्त करती हुई कथाओं का भी वर्णन किया। और चूंकि इन कथाओं के केंद्र में श्री कृष्ण है, इसलिए इन कथाओं का श्रवण करने से हमारे रस को आस्वादन करने की जो इच्छा है, जिसके लिए हम तड़पते रहते हैं नित्य निरंतर, वो इच्छाएं पूरी होती है। गोपाल जी कहते हैं इस बात को स्पष्ट रूप से अपने भागवत के जगह तात्पर्य में, कि मनुष्य को चाहिए कि वो नित्य निरंतर 18 पुराण और इतिहास की कथाओं को पढ़ता रहे, सुनता रहे, क्योंकि इन कथाओं का श्रवण करने से उसके जो फाइन सेंटिमेंट्स हैं, उसकी जो भावनाएं हैं और उसके जो रस को आस्वादन करने की जो इच्छा है, वो संतुष्ट हो, वो पूरी हो, वो पूर्ण हो। और हमारे शास्त्र में बहुत सेटिस्फाइंग स्टोरी बताई है, अलग अलग रसों का आस्वादन कराते हैं, 18 पुराण है, उसमें 6 पुराण सात्विक प्रकार के लोगों के लिए, 6 पुराण राजसिक और 6 पुराण तामसिक लोगों के लिए, लेकिन सभी पुराणों के आदि, मध्य और अंत में श्री हरि का ही गुणगान किया है। वेदे रामायणे पुण्य भारते भरत आभो चालते मध्य से हरि ही सर्वत्र गीयते, हरि का ही गुणगान किया। तो माधुर्य रस में एक है श्रृंगार रस, ये बहुत डेलिकेट है। श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंध में श्री कृष्ण और गोपियों के बीच में जो रस का आदान प्रदान होता है उसका बड़े विस्तार से वर्णन किया, बड़े विस्तार से सुनी, चार पांच अध्याय है, पांच अध्याय और भी विस्तार से वर्णन दूसरे प्राण में थोड़ा मिलता है, तो पूरी तरह से आध्यात्मिक है। तो उसी प्रकार से यहां भी जैमिनी देखेंगे कि इस मॉड्यूल में हमने पहले की तो कथा नहीं सुनाई और इसी उपाख्यान की आप देख लीजिए चंद्रहास उपाख्यान में ही अलग अलग प्रकार के रस का आस्वादन हमने किया, वीर रस का आस्वादन भी किया, फिर इसमें भयानक रस भी आएगा जो दुष्ट बुद्धि का बड़ा भयानक आदमी है, शांत रस का भी वर्णन है। तो अलग अलग प्रकार के रस को जैमिनी ने कवर किया है। तो इसको ध्यान से सुनकर, क्योंकि इसके केंद्र में श्री कृष्ण है, इसलिए इन कथाओं का श्रवण करने से हमारी रस का आस्वादन करने की जो इच्छा है वो पूरी होगी और इन कथाओं का श्रवण हमें नित्य रूप से करना चाहिए। जैसे वो नष्ट प्रायश बुद्रेशु नित्यम भागवत सेवया, भगवती उत्तम स्लोके भक्ति भगवती नैष्ठिकी, श्रीमद् भागवतम की कथा का श्रवण नित्य रूप से करना चाहिए। इन कथाओं का श्रवण करने से हम रसों का आस्वादन कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं ना भागवतम को, निगम कल्पतरु गल्पम फलम शुकम मुखात अमृत चक्र संयुतम विपद भागवतम रस आलयम मुहूर्त भूमि भाव का। ये भागवत पुराण कैसा रस का आलय है, अल्टीमेटली यही है, एसेंस यही है, ताज यही है कि सभी लोग रस का आस्वादन करना चाहते हैं अलग अलग रूप से। अभी घर जाएंगे खाना खाएंगे वो भी रस का आस्वादन है ना, फिर उसके बाद टीवी देखेंगे, ज्यादातर लोग टीवी देखते हैं, 99% लोग, वो टीवी में भी क्या करते हैं लोग, रसास्वाद करने का ही ट्राई करते हैं है ना। पहले वो अलग अलग टाइप के जो रस होते हैं, भयानक रस, वीर रस, रोमांस, कॉमेडी, मिस्टर बीन का कॉमेडी शो आता मर गया शायद, तो वो लोग देखते हैं, तो अलग अलग प्रकार के रस का लोग आस्वादन करते हैं। तो रस्ती में अल्टीमेटली सभी लोग जीव मात्र किसी भी योनि में हो, पशु की योनि में भी वो रस का आस्वादन ही करना चाहते क्योंकि उसका मूल स्वभाव। अब देखिए कुत्ते बिल्ली भी जो है वो भी अपने बच्चों को कितना प्यार करते हैं। अब गाय देखिए खड़ी होती है, गायों का झुंड खड़ा होता है तो एक दूसरे को चाटती है, एक दूसरे को प्यार करती है, ये क्या, ये रस का आदान प्रदान है। तो जीवात्मा किसी भी स्थिति में भौतिक या आध्यात्मिक स्तर पर भी, किसी भौतिक स्तर पर भी किसी भी योनि में हो तो रसास्वाद करने के लिए तड़पता है, ये उसका मूल स्वभाव है। इसलिए जो महान ऋषि लोग जो थे वो जीवात्मा के इस वृत्ति को बलिभांति जानते हैं क्योंकि वो जीवात्मा का स्वभाव जानते हैं और हमारे ऊपर बड़ा अनुग्रह करके, हमारे ऊपर बड़ी करुणा करके उन्होंने जो ग्रंथ लिखे, जो शास्त्र लिखे, उसमें उन्होंने सभी प्रकार के रसों को व्यक्त करती हुई वास्तविक कथा का वर्णन किया। ऐसा नहीं कि जस्ट नॉवेल में करते हैं, नॉवेल में क्या करते हैं कि वो पर्टिकुलर ऐसे स्टोरी वो मन में बना लेता है फिक्शन, उसमें अलग अलग रस का वर्णन उस प्रकार को व्यक्त करते हैं। लेकिन ये सब कथाएं कैसी हैं जिसमें रसों को व्यक्त किया गया है भूतकाल की वास्तविक कथाओं से, जो घटना घटी है इतिहास के माध्यम से। तो और क्योंकि इसके केंद्र में श्री कृष्ण है, इसका श्रवण करने से दो लाभ हो रहे हैं। एक लाभ तो हो रहा है कि आपको इंस्टेंट वो आप रसास्वाद कर सकते हो, इससे सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, ये सब कथाओं का श्रवण एक प्रकार की संतुष्टि प्राप्त होती है जिसमें रस का आस्वादन करें अच्छा लगता है। तो और दूसरे फायदा यह है, दूसरा लाभ यह है कि चूंकि श्री कृष्ण से संबंधित है इसलिए इसका श्रवण करने से हमारी शुद्धि होती है और जितना ज्यादा हम शुद्धि होती जाती है इन रसों का आस्वादन और हम कर सकते हैं क्योंकि यह रस आध्यात्मिक है, इसका कोई अंतर नहीं है, ये इनफाइनाइट है। तो जितना ज्यादा हमारी शुद्धि होती है उतना रसों का आस्वादन और कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये सब पुराणों का इतिहास का श्रवण करने का यही उद्देश्य है, प्रयोजन है कि हम भौतिक रस से निवृत्त होकर आध्यात्मिक रस से आसक्त हो जाएं और जिस समय हम आध्यात्मिक रस से आसक्त हो गए उस समय हमें हमारी जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से मुक्ति होगी, क्योंकि जो व्यक्ति श्री कृष्ण और उनसे संबंधित वस्तुओं से आसक्त हो जाता है उसकी इस संसार चक्र से निवृत्ति हो जाती है। तो शास्त्र के इस प्रयोजन को भलीभांति समझकर इसका श्रद्धा से श्रवण करना चाहिए और इसको रिलिश करना चाहिए, उसका आस्वादन करना चाहिए। तो यहां श्रृंगार का वर्णन करें जैमिनी, ये अध्याय और इसके बाद वाला भी थोड़ा एक अध्याय जिसमें रोमांस आता है विषय और चंद्रहास के बीच में। तो ये माधुर्य रस है, तो माधुर्य रस का एक पार्ट है श्रृंगार रस। तो यहां श्रृंगार रस है, पिछली बार भी हमने वर्णन किया था कि वसंत ऋतु का वर्णन किया था, किस प्रकार के वहां शोभा हो रही थी मन की, वो श्रृंगार एक प्रकार का श्रृंगार है, रोमांटिक एटमोस्फियर था। तो यहां चंपक मालिनी जो कुंतलक की बेटी है और दृष्ट बुद्धि की बेटी विषया, उन दोनों के बीच में वार्तालाप हो रहा है। गौर से सुनिए, मैं शब्दशा पढ़ूंगा यहां से क्योंकि बहुत पोएटिक है। राजकन्या यानी कि चंपक मालिनी ने कहा विषया से, विषय तेरे मुख पर चंद्रमा को भी मास करने वाली अतिशय उत्कृष्ट शोभा वर्तमान है। जैसे मैंने पिछली बार बोला था, यदि हम इस रस, आज मैंने बोला कि रस का आचरण बहुत आध्यात्मिक रूप से नहीं करेंगे तो भौतिक रूप से करेंगे, और जैमिनी और व्यास और उनके शिष्य फ्री स्टाइल में नरेशन करते हैं। तो कह रहे हैं कि तेरे मुख पर चंद्रमा को भी मास करने वाली अतिशय उत्कृष्ट शोभा वर्तमान है, और वक्ष स्थल पर जो ये तल विद्यमान है इनके रूप में क्या यहां रति के साथ कामने शोभा पा रहे हैं। तेरी भक्ति भाव से संतुष्ट होकर तुझे स्वप्न देकर वे दोनों रति और कामदेव इस समय तेरे वक्ष स्थल पर प्रकट हुए हैं। अतः सखी, तू इन्हें इनका प्रतीक ही समझकर इनकी पूजा करने के लिए भगवान से किसी पूजक की प्राप्ति के निमित्त प्रार्थना कर। जो सुगंधित चंदन केसर कपूर और सुंदर पत्र भंगियों द्वारा इन रति और मनमत के प्रतीकों की पूजा करने में समर्थ हो, सायंकाल हो अथवा प्रातः काल, किसी समय उससे पूजन में आलस्य न आता हो और पूजन कार्य में जो निपुण हो ऐसे ही किसी पुजारी की तू इस समय याचना कर। मिल जाने पर तू ऐसे पूजक को अपने प्राण देकर भी वश में कर लेना। सखी, तेरा बाया नेत्र पड़क रहा है, ये कुछ गुड ओमेन हो रहा है तो, जैसे शुक्र के जो सिम्टम्स होते हैं, तेरा बाया नेत्र पड़क रहा है और आम के वृक्ष पर बैठा हुआ कौवा बोल रहा है। ऐसा बोलता है कि कौवा जब बोलता है तो कोई आने वाला है, कोई मेहमान आने वाले, और आम के वृक्ष पर बैठा हुआ कौवा बोल रहा है जिससे सूचित होता है कि तेरे इन सन रूपी देवों की पूजा करने वाला कोई प्रिय पुरुष आ ही रहा। चंपक माले ने इन डायरेक्टली चंद्रहास के बारे में इंगित कर रही है। ऑफकोर्स उसको पता नहीं कि यहां चंद्रहास विद्यमान है, लेकिन वो जो ओमेन हो रहे हैं उसका बाया नेत्र पड़क रहा है और कौवा बोल रहा है, उससे वो ऐसे कंजेक्चर कर रही है। तो चंपक मालिनी के ये परिहास सुनकर विषय हंस पड़ी। आप समझ रहे ना ये सिचुएशन कैसा है, ये सब लड़कियां कैसी है, तो 14 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो 13.5 साल की लड़कियां हैं सब, और एक दूसरे के साथ हाथ परिहास करती है। पहले के युग में इस उम्र में ही उनकी शादी कर दी जाती थी, जब वो प्यूबर्टी को हिट करते थे उसी समय उनकी शादी, तो उस समय ये लोग इस प्रकार से हाथ परिहास करते थे। अभी भी लोग करते हैं, अभी लोग 25-26 साल हो जाते हैं तब भी शादी नहीं होती उन्हें। कुछ लोग तो अपने करियर बनाने के लिए 30-32 साल तक शादी नहीं करती है, कुछ लड़कियां, पुरुष नहीं करे वो तो समझ सकते हैं, पुरुष का चलता चल जाता है, लेकिन लड़कियां भी 30-35 साल करियर के लिए इतनी एज उनकी चली जाती है। तो विषया ने कहा सखी, अभी फूलों का तोड़ना बंद होना चाहिए क्योंकि हम लोग सूर्य के ताप से संतप्त हो रहे हैं, और हम लोग उस कमलों से बड़ा हुआ जो सरोवर है वहां स्नान के लिए चलते हैं, वहां जल पीड़ा के लिए चलते हैं। इतना मनोहर वातावरण है यहाँ, तो कलयुग में तो ऐसी अद्भुत शोभा हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वसंत ऋतु की और जो उपवन था वहां कुंतलपुर में, विषया की यह बात सुनकर सभी कन्याएं उस पुष्पवन से निकलने लगी और वो सर्वती परम जाने लगे। उनमें से यहां बहुत ड्रामेटिक वे में डिस्क्रिप्शन दिया कि अलग अलग लड़कियां अलग अलग प्रकार की क्रीड़ाएं कर रही थी वहां, तो उनमें से दो कन्याएं जो झूले पर झूल रही थी एक दूसरे के ऑपोजिट ऐसे, एक यहां आ रही है कहां रही है यहां आ रही है एक दूसरे के आमने सामने, और झूले पर झूलते हुए मधुर गीत गान कर रही है, मधुर स्वर से गान कर रही है, गीत गा रही है। इस प्रकार की इंक्वायरी यहां उन्होंने नहीं किया। अभी के तो मूवीज के सॉन्ग गाते हैं लोग, शायद ये लोग भगवान से संबंधित गीत गा रहे हो, क्योंकि पहले भी इसमें वर्णन किया है और चल रहा पाठ्यक्रम में समझ में आएगा कि जब वो पहले वर्णन किया है शायद ने, जब वो चल रहा का राजाभिषेक हुआ था उस समय उनके नगर के जो निवासी थे वो श्री कृष्ण से संबंधित ऐसे बहुत सारे गीत गाने लगे थे और उसी के द्वारा पूरा महोत्सव बनाया था। तो वो दोनों कन्याएं वो झूले पर से उतरी और दोनों एक दूसरे से टकराई तो उन्होंने जो मोतियों की माला पहन रखी वो टूट कर नीचे गिर गई। ऐसे यहां सीन बनाया है, डिस्क्रिप्शन दिया है। कोई पुष्पों को एकत्र करके जोर से दौड़ कर आई और विषया और चंपक मांगनी के ऊपर पुष्प वृष्टि की। जो क्रीड़ा करते हुए कन्या है कमलिनी समूह से सुशोभित, पूरा कमल है वहां सरोवर के साथ, उस सरोवर में जा पहुंची। उस समय उनके नुपुरों की जनता सुनकर हंस जो थे अपनी हंसिनियों के साथ उस सरोवर से बाहर चले गए, जाने लगे वहां से, क्योंकि हंसों ने मन में सोचा कि हमारे मन में उल्लास करने वाला यह सरोवर अभी इन लोगों के द्वारा गंदला हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, क्योंकि ये लोग यहां आकर उपद्रव करेंगे, ये कन्या या उपद्रव करेंगे तो क्या क्रीड़ा करेंगे यहां। और वो सोचने लगे यहां कि ये सब कन्याएं कामुक है, लक्ष्मी है, इसलिए बहुत सा पुष्प लेकर यहां आएंगे और यहां इस सरोवर में क्रीड़ा करेंगे, तो बेटर कि हम यहां से चले जाएं। ऐसे हंस सोचकर वहां से चले गए। तो नारद जी ये कथा कौन सुना रहे हैं? नारद जी अर्जुन को सुना रहे हैं। तो नारद जी कहते हैं अर्जुन को कि इस सरोवर के तट पर पहुंचकर वे कन्याएं अपने पहने हुए रेशमी और सुंदर सूती वस्त्रों के को उतारने लगी। जिस समय सिकुने के कारण उन वस्त्रों से मरमराहट की आवाज प्रकट होने लगी, उस समय वहां वो जो महीन वस्त्र पहनकर रखे थे कन्याओं ने उन सूक्ष्म रेशमी वस्त्रों को उठाने में उड़ाने में पवन भी समर्थ नहीं हो पाया। पवन जब बहता है तो कपड़े सब उड़ जाते ना, जैसे ये याद है कि कथा में हमने वर्णन किया था जो शर्मिष्ठा देवियां जी के कपड़े एक दूसरे में मिल गए थे, वायु देवता ने उसको मिला दिया, एक्चुअली इंद्र देव ने वायु का रूप देकर मिला दिया, लेकिन ये पवन जो था उनके कपड़े उड़ाने में समर्थ नहीं हो पाया, क्योंकि उन कन्याओं के गुणों के पास उसमें पास से बंद कर वही स्थगित हो गया था, वही निश्चलता को प्राप्त हो गया, मतलब इतना इफेक्ट हुआ। क्या ये ऐसे काव्य में ढंग से वर्णन किया। फिर वहां चंपा के समान गौर बनने वाली ये कन्याएं क्रीड़ा करने की इच्छा से उस सरोवर में उतरी और उस अघाध एवं निर्मल जल से भरे हुए उस सरोवर को उफला और गंदला, उसको गंदा कर दिया। गंदा था इनके शरीर पर जो सब कुमकुम इत्यादि यहां वर्णन किया, जो अलग अलग प्रकार जो डेकोरेटिव एलिमेंट जो उन्होंने लगाए थे अपने शरीर, तो वो सब पानी में ऐसे इस प्रकार से फ्लड हो जाता है और जो फूल वगैरह जो श्रृंगार किया था उन्होंने वो फैल गया वहां पानी में। क्रीड़ा करते समय चंचल हाथों से उछालने से कूद कर गिरे हुए मोतियों से पूरित हुआ वह ताला उनकी कलाइयों से खिसक कर गिरे हुए मूंग मणियों से चित्रित सा लगने लगा तथा उन कन्याओं के मुख रूपी चंद्रमाओं से अलंकृत होने के कारण वह अपार शोभा से संपन्न हो गया। इस प्रकार वह सरोवर उस समय साक्षात रत्नाकर के समान अत्यंत शोभा पाने लगा। रत्नाकर माने समुद्र। तब तथा उनके तनों पर लगे हुए कुमकुम कस्तूरी चंदन और अगुरु की गंध से अत्यंत सुगंधित जल से वे कन्याएं परस्पर एक दूसरे को भिगोने लगी। जैसे स्प्लैशिंग करते हैं पानी में गिरते हैं तो नदी में स्नान किया ना आप लोगों ने कि नहीं किया है, तो एक दूसरे को स्प्लैश स्विमिंग पूल में एक दूसरे को स्लैश करते हैं, एक इस प्रकार से खेलते हैं। तो जब उठाते समय उन कन्याओं की ऐसी शोभा हो रही थी मानो उस वन में जल देवता ही आकर उछलते हुए जल बिंदुओं के ब्याल से मोतियों द्वारा पीड़ा कर रहे हैं। बहुत ज्यादा पोएट्री है, मैं इसको याद कर नहीं पड़े इसलिए मैं शब्द शब्द पढ़ा हूं, इतना ज्यादा पोएट्री में याद नहीं रख सकता। उस समय जलबिंदुओं की वर्षा होते देखकर चातकों को बादल की आशंका हो गई। फिर तो वे जलपान की इच्छा से अपने मुंह फैलाकर बादलों की पंक्तियों की ओर निहारने लगे। उनको ऐसा लगा कि बारिश होने वाली, इसलिए चातक ऐसे बैठ गए। फिर कुछ कन्याओं ने मिलकर किसी दूसरी को सोने की सुंदर नावों से यानी के नावों से बांध दिया। यह देखकर कुछ कन्याएं ठहाका मारकर हंसने लगी, वहां भी क्रीड़ा कर रही, खेलने का मूड है इनका। कुछ निंदिन घोष करते हुए घूमने लगी और कुछ गीत गाने लगे। इस प्रकार कुमकुम संयुक्त जल वाले उस सरोवर में स्नान करके उन कन्याओं ने तट पर आकर अपने अपने रेशमी वस्त्र पहन लिए, खूब खेले वहां, फिर बाहर आकर अपने कपड़े पहन लिए। तब पश्चात वे कर्ण पूर्ण बहुमूल्य मोतियों के हार और सुवर्ण पदकों से तथा पूर्ण चंद्रमा के समान कांतिमान तिलकों से अपने शरीर का श्रृंगार करने लगे। उसी समय चंद्रहास की दुष्ट बुद्धि की पुत्री विषया वो भी तट पर आई, उसने अपने कपड़े पहने और फिर उसकी नजर पड़ी चंद्रहास पर जो कुछ दूरी पर था और शयन कर रहा था, आराम कर रहा था। पिछली बार हमने वर्णन किया था ना कि दुष्ट बुद्धि ने पत्र लिखा था मदन को संबंधित करके कि इसको विष दे देना, याद है ना कि भूल गए। तो ये जो विषया है वो चंद्रहास को टकटकी लगाकर देखने लगी, एक टक देखने लगी, शी वुड नॉट इवन थिंक, एकदम एक टक नजर से देखने लगी। जैसे उसी प्रकार से जैसे रमादेवी भगवान विष्णु को निहारा करती है, पता ना रमादेवी माने लक्ष्मी देवी, वो उनका हमेशा पैरों में मसाज करके उनके पैर दबाती है महाविष्णु के या गर्भ दक्षिणा विष्णु, तो उनकी तरफ एक तरफ देखा करती है रमादेवी। तो चंद्रहास की अवस्था उस समय 16 वर्ष की थी और दाढ़ी मूछ के कुछ सिम्पटम चिन्ह प्रकट हो रहे थे, माने इंगित किया है कि वो क्या बोलते हैं उसको प्यूबर्टी में आगे, प्यूबर्टी अर्थात वयस्क हो गए ऐसा बोल सकते हैं, और जिसका प्रकाशमा ऊंचा ललाट था, उसका जो ये फोरहेड का जो पार्ट था विशाल, और थोड़े से मनुष्य उसके साथ थे और उसने अपने घोड़े को रेशम की डोरी से वो आम के पेड़ के साथ बांध दिया था। तो इसको विषया देखने लगी और सोचने लगी कि ये कोई सिंह शावक के समान वीर पुरुष है, वीर राजकुमार है, क्योंकि उसका श्रृंगार भी ऐसा। हमने पिछली बार वर्णन किया था कि जब चंद्रहास आ रहे थे तो कुछ लोगों ने उनको माला पहनाई थी, कुछ लोगों ने उनको फूलों से बना हुआ मुकुट पहना दिया था, तो उसी से वो जैसे दूल्हा होता है वैसे दिखने लगा था ऑलरेडी। तो इसको देखकर और इसकी शोभा बढ़ गई थी, तो विषया उसको देखकर तुरंत उसके प्रेम में पड़ गई, लव एट फर्स्ट साइट, यहां तक कि वो उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहती, इतना ज्यादा आसक्त हो गई। ये प्रारब्ध निर्मित था, ये देव वश हो रहा था, तो इसको टाला नहीं जा सकता। तो नारद जी कह रहे हैं पार्थ तब अनंत क्रीड़ा जल क्रीड़ा करने से जिसके नेत्र लाल हो गए थे वो सब कन्या अपने अपने घर की ओर चलनी, लेकिन विषया जो थी वो चंद्रहास से आसक्त होकर वहीं ठहर गई। जैसे बहुत बड़े झुंड के साथ चलने वाला कोई पर्टिकुलर व्यक्ति कोई खजाना मिल जाने पर वहीं ठहर जाता है, उसी प्रकार से विषया को जैसे कोई खजाना मिल गया तो वहीं ठहर गई वो, बाकी सब लड़कियां जाने लगी। और अपने मन में भिन्न भिन्न प्रकार से तर्क वितर्क करने लगी कि मैं इस निर्जन वन में इस वीर पुरुष के पास जाऊं कि नहीं जाऊं, इतना सुंदर लुभावना इसका रूप था चंद्रहास का कि वो अपने आप को रजिस्ट नहीं कर पा रहे। जिस प्रकार से लोह चुंबक होता है उसके पास लोहा अपने आप आकर्षित होता है, उसी प्रकार से इसके रूप सौंदर्य, चंद्रहास के रूप सौंदर्य और उसका अनुपम तेज था, उसके अनुपम कांड भी उसके शरीर में, उससे आकर्षित होकर विषयाना चाहते हुए उसकी ओर बढ़ने लगे, वो सब मर्यादाएं हो गए। इस प्रकार से सोच रही थी तो कामदेव वहीं बैठे थे अपने धनुष लेकर, और उसने वो कामरूपी बाण चला दिए विषया के ऊपर, और उस बाण से विषया के जो विवेक बुद्धि थी उसको छिन्न भिन्न कर दिया, उसको नष्ट कर दिया, वो विवेक बुद्धि शुद्ध बुद्ध उसका चला गया, उसने सब मर्यादाएं तोड़ दी। मैंने वास्तव में देखा जाए तो ऐसे निर्जन मन में ऐसे कोई पुरुष के पास जो पेंटर नहीं जाना चाहिए, ये कुंवारी कन्या हो तो ऐसे उनकी मर्यादा होती है, क्योंकि वो अपने पिता के अधीन होती है, कुंवारी कन्या पिता के अधीन होती है, उसका पिता जहां उसको दे वहीं उसको जाना चाहिए, अपनी स्वेच्छा से नहीं जाना चाहिए आदर्श रूप से। आपको क्षत्राणियों का बिहेवियर अलग हुआ करता था, ये क्षत्राणी है अलग था कुछ केस में, इन आइसोलेटेड केसेस यूजुअली सभी वर्ण के ब्राह्मण क्षत्र वैश्य शूद्र अपने विवाह से पूर्व पिता के अधीन होते हैं, पिता जहां उनको ब्याह करे वहीं वो जाते थे, वो अपनी स्वेच्छा से और स्वच्छता करके कोई कार्य नहीं करते। तो ये जो विषय थी बहुत आकर्षित हुई थी चंद्रहास से, उसने अपनी सैरंद्री को बुलाया, सैरंद्री माने जो वो राजकन्याओं का श्रृंगार करती थी, उनको श्रृंगार करती थी, उसको सैरंद्री बोलते थे। तो सैरंद्री को बुलाकर अपने पायजेब उसको दे दिए, जो पायल उसने पहन रखे थे वो दे दिए, क्यों, क्योंकि वो चोरी छुपी चंद्रहास के पास जाना चाहती थी, चंद्रहास सो रहे थे तो वो नहीं चाहते थे कि वो जग जाए, इसलिए उसने पायजेब निकालकर सैरंद्री को दे दिए। तत्पश्चात स्वयं जैसे हंसी हंस के पास जाती है, या हंस और हंसी का की उपमा दी है, उसका कारण यह है कि चंद्रहास और विषया दोनों का चरित्र बड़ा निर्मल है, बड़े शुद्ध प्रकृति के लोग हैं दोनों, इसलिए हंस के साथ उसकी तुलना की है। तो जिस प्रकार से हंसी स्वयं हंस के पास जाती है, उसी प्रकार से अपने पैर के ऊपर पैर रखकर वो चंद्रहास के पास गई, पैर के ऊपर पैर रखकर मतलब दबे पांव बोलते ना हम लोग, दबे पांव, जैसे किसी को पता नहीं, जैसे चोर दबे पांव आता है वैसे, तो दबे पांव वो चंद्रहास के पास गई। उस समय उसने जो रेशमी वस्त्र पहनकर रखे थे विषया ने, वो कभी कभी उसमें से आवाज आने लगती थी, वो गिर जाते थे, फड़क जाने पर वो संशखित हो जाती थी, वो उसको ऐसा लगता था चंद्रहास जग ना जाए, ऐसे वो होने से चंद्रहास के पास गई, और जाते समय उसने चंद्रहास का घोड़ा देखा जो घास कर रहा था, घास खा रहा था, उसको बांध दिया था पेड़ के साथ। तो उस अश्व को नमस्कार करके विषया मन ही मन वो अश्व को प्रार्थना करने लगी कि अश्वराज मेरे प्राण अपने प्रियतम में आसक्त हो गए, तुम हीस कर उन्हें वियुक्त न करना, माने तुम आवाज करके उनको जगा मत देना। इस प्रकार कहते हुए विषया वो चंद्रहास के पास गई और उनको पति के समान, उसने मन में निश्चय कर ही लिया कि यही मेरे पति, यही मेरे स्वामी, पति के समान मानकर एक तक निहारने लगी। और उस समय उसने देखा, उसका ध्यान गया कि चंद्रहास ने सोते समय अपना कोट उतार कर साइड पर रख दिया था, और उस कोट की जेब में उसने एक पत्र देखा, जो पत्र उसने उसको दुष्ट बुद्धि ने दिया, और दुष्ट बुद्धि इसका बाप है विषया का, तो उसके उस पत्र के ऊपर नजर पड़ी, तो उसने आश्चर्यचकित कौतूहलवश, क्योंकि 13 साल की कन्या है, तो कौतूहलवश उसने वो खींच लिया कोट की जेब से, और उसने देखा कि उसके ऊपर मोहर लगाई है, और मोहर देखकर वो समझ गई ये तो मेरे पिताजी ने ही लिखा है, वो सील होता ना, वो ऐसे लेटर को एनवलप में बंद करते हैं फिर उसके ऊपर वो सील लगाते हैं लाल कलर का, अभी हम ऐसे लिखते हैं कई बार, तो उसी प्रकार से मोहर लगाई गई थी। तो उसने खोलकर उसको देखा, पत्र को देखकर, उस पत्र में लिखा था, यहां शब्द से वर्णन करता हूं क्योंकि उसने मदन को एड्रेस करके लिखा था, दुष्ट बुद्धि ने, मदन तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें लक्ष्मी की प्राप्ति हो। पत्र लिखने का कारण इस प्रकार से, यह चंद्रहास मेरा परम हित है, देखिए इसने दुष्ट बुद्धि ने, क्योंकि सरस्वती ने ऐसी बुद्धि दी थी, शब्द प्रयोग भी कैसे किए हैं, चंद्रहास मेरा परम हित है, अर्थात वी हैव टू रीड बिटवीन अ लाइन, वो ऐसा कहना चाहता था कि चंद्रहास की मृत्यु मेरा परम हित है, दैट्स व्हाट ही मेंट। तुम्हें ऐसा समझना चाहिए कि यह मेरी संपत्ति का भावी उत्तराधिकारी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए पुत्र तुम्हें मेरे लिखे अनुसार कार्य करना चाहिए, तुम इस मित्र के रूप अवस्था कूल शील पराक्रम विद्या और बल की ओर मत देखना, मत ध्यान देना, निश्चय ही बिना विलंब किए ऐसा करना। तुम पार्वतीपति भगवान शंकर का ध्यान करके इस मदन शत्रु, देखो यहां वो कुछ हिंट कर रहा है, कृष्ण बुद्धि क्या कह रहा है कि इस मदन शत्रु को, मदन कौन है, उसका बेटा कृष्ण बुद्धि का, जो जिसको एड्रेस किया गया है लेटर, माने ये चंद्रहास जो है वो मदन का शत्रु है, दैट्स व्हाट ही मीन्स। लेकिन विषया ने क्या मीनिंग निकाला, मदन तो एक कामदेव का भी नाम है, तो विषया ने मीनिंग निकाला जो कामदेव से भी अधिक सुंदर है, मदन शत्रु है उसको बोलते हैं जो कामदेव से भी अधिक सुंदर होता है, तो कृष्ण का नाम मदन शत्रु है क्योंकि वो कामदेव से भी अधिक सुंदर है, उनको कंदर्प भी कहते हैं क्योंकि वो कामदेव से अधिक सुंदर है, अलग अलग प्रकार प्रकार से नाम भगवान। तो विषया ने ऐसा मीनिंग निकाला मदन शत्रु का कि ये क्योंकि कामदेव से भी अधिक सुंदर है, इसलिए पिताजी ने ऐसा शब्द प्रयोग किया। तो भगवान शंकर का ध्यान करके इस मदन शत्रु को विष अवश्य दे देना, यह स्पष्ट लिखा। दृष्ट बुद्धि ने मदन को एड्रेस करके चंद्रहास को विष दे देने के लिए स्पष्ट लिखा। तो विषया ने पत्र पढ़ा, ये अब इसका अभिप्राय समझने के लिए विचार करने लगी, वो सोचने लगी क्या लिखा है। तो सोच विचार करने के पश्चात उसने निर्णय किया कि इसमें ये बात स्पष्ट है कि ये जो चंद्रहास है वो मदन के समान मेरा सदा हितकारी, ऐसा पिताजी पिताजी समझते, क्योंकि इसमें लिखा है कि चंद्रहास मेरा परम हित है। वास्तव में दुष्ट बुद्धि क्या लिखना चाहता था कि चंद्रहास की मृत्यु मेरा परम हित है, लेकिन उसने ऐसा तो नहीं लिखा नहीं, इसलिए उसने तो विषया ने ऐसा डायरेक्ट मीनिंग निकाला कि मदन के समान यह मेरा सदा हितकारी है, ऐसा पिताजी ने लिखा है, और मेरी संपत्ति का स्वामी है, वो भी उसने लिखा है, क्योंकि ब्राह्मणों ने बोला था ऐसा कि अगर ये मरे, ब्राह्मणों ने बोला था कि ये तुम्हारी संपत्ति का भावी उत्तराधिकारी है, ऐसा ब्राह्मणों ने, इसलिए उसको मार देना चाहता था ये दुष्ट बुद्धि, वो ब्राह्मणों की वाणी को असत्य करना चाहता था। ये सब बातें तो जच रही है, लेकिन पिताजी पता नहीं ये विष दे देने के लिए क्यों लिखा है, ऐसा प्रतीत होता है कि इसने सुंदर वर को देखकर, मेरा जो वर होने वाला है उसको देखकर पिताजी सूझबूझ गवा बैठे थे, और उन्होंने विषया की जगह विष लिख दिया, विषया ने ऐसा मीनिंग निकाला है, विषया ने ऐसा समझा कि मदन को ऐसा, भैया को ऐसा कहना चाहते थे पिताजी कि इसको विषया दे देना, और पिताजी क्योंकि सूझबूझ गवा बैठे थे उसको सुंदर रूप को देखकर, इसने विषया की जगह विष लिख दिया, ऐसा ऐसा विषया ने मीनिंग निकाला। तो फिर वो लेटर को थोड़ा प्रूफ रीडिंग एडिटिंग करना चाहते थे, कुछ उसमें सुधारना चाहते थे, इसलिए अपनी जो कनिष्ठिका होती है वो आम के पेड़ के पास खड़ी थी, तो पेड़ में से गौन निकलता है ना, उसको सैप बोलते हैं इंग्लिश में, तो खरोच कर उसमें से सैप निकाला, वो गौन निकाला, और उसी से थोड़ा उसका करेक्शन कर दिया। उसने लिखा, पहले लिखा था विषमत्ने प्रदातव्यम, इसे विष दे देना, तो उसने लिख दिया विषयात्ने प्रदातव्या, मान इसको विषया दे देना। अभी पूरा लेटर परफेक्ट हो गया ना, अभी उसके हित में हो गया चंद्रहास से, तो ऐसा लिखकर बहुत संतुष्टि हुई विषया, और विषया ने फिर वापस उसको आम के गौंद से उसको वापस सील कर दिया, जो वहां मुहूर्त में पहले लगाया गया वैसा का वैसा वापस मुद्रित करके उसको चंद्रहास की कोट की जेब में डाल दिया, और फिर अपने घर की ओर चल दी, और चलते समय बारंबार पीछे की ओर मुड़ मुड़ के देखने लगी, अपने प्राण वल्लभ को देखने लगी, बार बार देखती थी, उसका इतना लावण्य था, लावण्य वैसे शब्द स्त्रियों के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन इसका रूप सौंदर्य ऐसा रहा चंद्रहास की विषया उसको देखने से निवृत्त नहीं होना चाहती, वो बार बार देखती जाती थी, नहीं चाहते हुए वो देखती जाती थी, इस प्रकार से वो आगे चलने लगी। कुछ जल्दी से चलकर वो अपने जो सखी जो पहले आगे चले गए उनको उनके साथ हो गई वो। अभी सखियों ने पूछा, भद्र तुमने विलन को क्यों कर दिया? तेरे मन में, क्योंकि उस समय विषया की मुखाकृति ऐसी थी कि उसके चेहरे पर हर्ष स्पष्ट दिख रहा था, वो बड़ी खुश थी, वो बड़ी प्रसन्न थी। तो बाकी की सखियों ने पूछा कि क्या कारण कि तुम इतनी हर्षित हो और पीछे मुड़ मुड़ के क्या देख रहे हो, तुम कौन है वहां? मुझे लगता है कि तुम्हें कोई पुरुष सिंह मिल गया, और यदि ऐसा है तो तुम उनका त्याग करके यहां कैसे आ गए? तुम्हें उन्हीं के साथ रहना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे प्राण मतलब वो शायद शयन का है, इसलिए तुम यहां आ गए। ऐसा करके एक दूसरे के साथ हाथ परिहास करके वो अपने अपने घर चले गए। तो विषय अगर जा रही थी अपने, तो उस समय कोइंसिडेंटली नगर में कुछ किसी का विवाह हो रहा था, तो उस विवाह उत्सव के अवसर पर वो नगाड़े जो बजते हैं उस शब्द को सुनकर और उसके साथ सौभाग्यवती स्त्रियां जो गीत गाती है उसमें साथ में मिस्ट्रेस हो रहा था, तो उसको सुनकर विषया अपनी शादी के बारे में सोचने लगी। ऐसा होता ना कई बार बारात जाती है तो अनमैरिड लोग सोचते कि मेरी शादी कब होगी, है ना, लड़के लड़के सोचते हैं। तो वैसे विषया भी बारात देकर, बारात तो नहीं देखी लेकिन वो शब्द उसके कान में पड़े कि किसी शादी के गाने चल रहे थे, तो ऊपर की ओर उसने देखा सूर्यदेव थे आकाश में, आकाशमंडल में। सूर्यदेव की ओर देखकर उनको प्रणाम करके मन ही मन अपने प्रियतम पति को प्राप्त करने के लिए उनसे प्रार्थना करने लगी। विषया की स्थिति ऐसी थी, कहते हैं ना लव इज ब्लाइंड, ये ऐसी थी, उसको ऐसा बार मारा था कामदेव ने कि हर क्षण वो चंद्रहास के बारे में सोचने लगी, एक क्षण वो चंद्रहास के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकती, और जहां जहां अवसर मिलता था वो उनको प्रार्थना करती थी कि चंद्रहास से मेरा मिलन हो जाए, मेरा उनसे विवाह हो जाए। तो ऐसे प्रियतम पति के दर्शन से आह्लादित हुई विषया अपने घर को लौटी, और उसका यहां पैलेस का थोड़ा सा ऐसे हिंस दिया है, 7th फ्लोर का था, 7 तल्ले का था, तो 7 तल्ले वाले भवन पर के ऊपर चढ़कर वो छत पर जाकर बैठ गई और चंद्रहास के बारे में सोचने लगी और सब और इधर उधर देखने लगी। तो आज की कथा यहां समाप्त करते हैं, अगले रविवार को चंद्रहास मदन को मिलने जाते हैं, आगे क्या होता है, वो पत्र में जो कुछ चेंजेस हुए हैं तो उसका क्या रिएक्शन आता है, वो अगले रविवार में इसका वर्णन करें। हरे कृष्ण। महाभारत ग्रंथ की, महर्षि जैमिनी की, श्रील प्रभुपाद की।